आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं असदुल्ला। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। अपोजिशन के लीडर राहुल गांधी ने लोकसभा में वजीर आजम के खिलाफ संगीन इल्जाम लगाए हैं। हुकूमत ने इसे बेबुनियाद करार दिया है और वो मुराआ शिकनी का एक नोटिस देगी। सनती ताल्लुकात से मुतालिक जाब्ते तरमीमी बिल 2026 लोकसभा में मुतारिफ कराया गया, जो ट्रेड यूनियन कानून और सनती तनाज़ात कानून की जगह लेगा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने रोल्स रॉयस के CEO तूफान एर्गुन बिल्गिस से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि भारत मुल्क में सरगर्मियों में तेजी लाने के लिए उनके जोशो जज्बे का खैर मकदम करता है। CBSE इस साल से 12वीं जमात के जवाबी पर्चों की जाँच के लिए ऑन स्क्रीनिंग मार्किंग तरीकेकार नाफिज करेगा। बांग्लादेश में सख्त सिक्योरिटी बंदोबस्त के दरमियान आज पार्लियामानी चुनाव और एक साथ रेफरेंडम के लिए पोलिंग जारी है। और मर्दों के ICC T20 आलमी कप में आज शाम दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में भारत का मुकाबला नामीबिया से होगा। अब खबरें तफसील से। पार्लियामानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू ने कहा है कि हुकूमत मरकजी बजट से मुतालिक बहस के दौरान ऐवान को गुमराह करने और बेबुनियाद बयानात देने के लिए लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी के खिलाफ मुराआ शिकनी का एक नोटिस देगी। वजीर मौसूफ पार्लियामेंट के अहाते में नामा निगारों से बात कर रहे थे। जनाब रिजिजू ने कांग्रेस लीडर पर इल्जाम लगाया कि उन्होंने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के खिलाफ बेबुनियाद और झूठे इल्जाम लगाए हैं। जनाब रिजिजू ने कहा कि किस बुनियाद पर जनाब गांधी ने कोई नोटिस दिए बगैर इस तरह का संगीन इल्जाम लगाया। उन्होंने मजीद कहा कि लोकसभा और राज्यसभा में इस तरह के इल्जाम साबित करने के लिए कामकाज के तौर तरीकों में निहायत वाज़ह ज़ाब्ते मौजूद हैं।
हम राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस लाने जा रहे हैं। उन्होंने सदन को गुमराह किया है और बिना किसी आधार के बयान दिए हैं। लोकसभा और राज्यसभा के कामकाज के नियम बहुत स्पष्ट हैं। अगर कोई सदस्य किसी दूसरे सदस्य पर गंभीर आरोप लगाता है तो उसे पहले इसकी सूचना देनी होती है और अपने आरोपों के सबूत भी पेश करने होते हैं।
पार्लियामानी उमूर के वजीर ने कहा कि उन्होंने उनसे दरख्वास्त की है कि उन्होंने ऐवान में जो बयान दिया है वो उन निकात की तस्दीक करें। सनती ताल्लुकात से मुतालिक जाब्ते 2020 के जरिए बदले गए कुछ कवानीन के जारी रहने से मुस्तकबिल में किसी तरह की गैर जरूरी पेचीदगी को टालने के लिए लोकसभा में गुज़श्ता रोज तरमीमी बिल मुतारिफ कराया गया। मेहनत और रोजगार के मरकजी वजीर मनसुख मांडविया ने वक्फे सिफर के दरमियान ऐवान में सनती ताल्लुकात जाब्ते तरमीमी बिल 2026 पेश किया। इस बिल को आज गौर खौस के बाद मंजूर किए जाने का इम्कान है। बिल के अगराज मकासद के मुताबिक सनती ताल्लुकात जाब्ते 2020 बिल ट्रेड यूनियन कानून 1926, सनती रोजगार कानून 1946 और सनती तनाज़ात कानून 1947 की जगह लेगा, जो ट्रेड यूनियनों, सनती रोजगार और सनती तनाज़ात से ताल्लुक रखते हैं। वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने जोर देकर कहा है कि हुकूमत रोजगार के मौके पैदा करने और तरक्की को फरोग देने के लिए मुल्क में मेहनत पर मबनी शोबों और MSMEs को जामे बुनियादी ढांचा तामीर करने में बड़ी मदद कर रही है। मोहतरमा सीतारमन कल शाम लोकसभा में मरकजी बजट 2026-27 पर बहस का जवाब दे रही थीं।
We are continuing our push in building infrastructure. Now it's not just roads, it's not just national highways, it's also looking at waterways so that the cost of logistics in this country can come down and states which are very much in the hinterland, not connected to any seaport, will have the advantage of moving goods faster at a lesser cost.
राज्यसभा आज मरकजी बजट 2026-27 पर बहस फिर से शुरू करेगा। तवक्को है कि वजीर खजाना निर्मला सीतारमन मरकजी बजट पर आम बहस का जवाब देंगी। उन्होंने कल लोकसभा में तरक्की को तेज करने की खातिर आइंदा सालों के लिए हुकूमत के विजन और मईशत के इस्तेहकाम को उजागर किया था। आलमी मईशत और जोग्राफियाई सियासी हालात की रोशनी में भारत की माशी तरक्की के लिए रोडमैप से मुतालिक मालियात की कायमा कमेटी की रिपोर्ट पार्लियामेंट के ऐवान जेरी में मेंबरे पार्लियामेंट भरुथरी महताब के जरिए पेश की जाएगी। बजट इजलास का पहला मरहला 28 जनवरी को शुरू हुआ था, जो कल तक जारी रहेगा। بجٹ اجلاس کا دوسرا مرحلہ اس سال درمیانی وقفے کے بعد 9 مارچ سے شروع ہوگا اور 2 اپریل تک جاری رہے گا۔ وزیراعظم نریندر مودی نے رولز رائس کے چیف ایگزیکٹو افسر طوفان ایرگن بلگچ سے ملاقات کی۔ سوشل میڈیا پوسٹ میں جناب مودی نے کہا کہ بھارت ملک میں اپنی سرگرمیوں میں تیزی لانے اور ملک کے روشن خیال اور اختراعی سوچ کے حامل نوجوانوں کے ساتھ ساجھیداری کے رولز رائس کے جوش کا خیر مقدم کرتا ہے۔ ٹیکسٹائل صنعت نے بھارت اور امریکہ کے درمیان ہوئے عبوری تجارتی سمجھوتے کی ستائش کی ہے۔ آلوک انڈسٹریز لمیٹڈ کے ڈائریکٹر اور ریلائنس انڈسٹریز لمیٹڈ کے صدر انیل راجونشی نے کہا ہے کہ اس سمجھوتے سے بھارت اور امریکہ کے درمیان کاروبار میں اضافہ ہوگا۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس سمجھوتے کی بدولت ٹیکسٹائل شعبے میں 4.5 کروڑ سے زیادہ لوگوں کو فائدہ پہنچے گا۔ جناب راجونشی نے یہ بھی کہا کہ یہ سمجھوتا روزگار کے مواقع بھی پیدا کرے گا اور صنعت میں پیداوار کو فروغ دے گا۔
اس ڈیل سے جو ہمارے ٹیکسٹائل سیکٹر، جوٹ سیکٹر، ہمارا لیدر سیکٹر، کیمیکل سیکٹر، جہاں پہ بہت زیادہ مین پاور امپلائے ہوتی ہے، ہمارے یہاں بھارت میں قریب 4.5 کروڑ لوگ خالی ٹیکسٹائل میں کاریرت ہیں۔ اس ڈیل سے ہمارا 5 سے 10 بلین اور 10 سے 15 بلین تک ہمارا جو نریات ہے اس میں وردھی ہوگی۔
ثانوی تعلیم کا مرکزی بورڈ سی بی ایس ای اس سال سے 12ویں جماعت کے جوابی پرچوں کی جانچ کے لیے آن اسکریننگ مارکنگ او ایس ایم طریقہ کار شروع کرے گا۔ تاہم 10ویں جماعت کے جوابی پرچوں کی جانچ پہلی کی طرح فزیکل موڈ پر جاری رہے گی۔ سی بی ایس ای کے ایگزامینیشن کنٹرولر سنیام بھاردواج نے بتایا کہ کارکردگی اور شفافیت کو بڑھاوا دینے کی اپنی جاری کوششوں کے تحت سی بی ایس ای نے اس سال سے 12ویں جماعت کے جوابی پرچوں کی جانچ کے لیے آن اسکریننگ مارکنگ او ایس ایم کا طریقہ کار متعارف کرایا ہے۔ سی بی ایس ای نے اس سال کے 10ویں جماعت کے دوسرے بورڈ امتحانات کا بھی اعلان کیا۔ یہ امتحان ان طلبہ کے لیے اختیاری رہے گا جو اپنی کارکردگی کو مزید بہتر کرنا چاہتے ہیں۔ بورڈ نے بتایا کہ وہ امتحانات کے انعقاد سے متعلق رہنما خطوط اور آن اسکریننگ مارکنگ کی وضاحت کرنے کے لیے کل صبح 11 بجے ایک لائیو ویب کاسٹ کرے گا۔ یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ بنگلہ دیش میں سخت سیکیورٹی بندوبست کے دوران آج 13ویں قومی پارلیمنٹ کے چناؤ اور ایک ساتھ ریفرینڈم کے لیے ووٹ ڈالے جا رہے ہیں۔ پولنگ آج صبح 7:30 بجے شروع ہوئی جو شام 4:30 بجے تک جاری رہے گی، جس میں 299 حلقوں میں 42,779 مراکز میں ووٹ ڈالے جا رہے ہیں۔ ایک امیدوار کی موت کی وجہ سے شیرپور 3 میں پولنگ ملتوی کر دی گئی ہے۔ چناؤ کمیشن کے مطابق 12.77 کروڑ رائے دہندگان ووٹ دینے کے مجاز ہیں۔ نئی حکومت منتخب کرنے کے ساتھ رائے دہندگان جولائی چارٹر کے تحت مجوزہ آئینی اور ادارہ جاتی اصلاحات پر فیصلہ کر رہے ہیں، تاہم ناقدین کی دلیل ہے کہ متعدد اصلاحات کو صرف ایک ہاں یا نا پر منحصر کرنے سے رائے دہندگان کی پسند کا دائرہ اختیار محدود ہو جاتا ہے۔ فوج کی حمایت سے تقریباً 9,58,000 قانون نافذ کرنے والے ایجنسیوں کے عملے کو پورے ملک میں تعینات کیا گیا ہے اور 90% پولنگ مراکز پر سی سی ٹی وی کیمرے لگائے گئے ہیں۔ ہمارے نامہ نگار نے اطلاع دی ہے کہ سابقہ حکومت کو اقتدار سے بے دخل کیے جانے کے بعد ہونے والے مظاہروں کے 18 مہینے بعد ملک میں ووٹ ڈالے جا رہے ہیں، جس پر قریبی نظر رکھی جا رہی ہے کیونکہ یہ بنگلہ دیش کی جمہوریت کے سفر کا اہم امتحان ہے۔ اسرائیل کے وزیراعظم بنجامن نتنیاہو نے وائٹ ہاؤس میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ میٹنگ کی جو تقریباً 3 گھنٹے چلی۔ پوری میٹنگ بند کمرے میں ہوئی۔ نتنیاہو نے میٹنگ پر کوئی تبصرہ نہیں کیا، البتہ بعد میں صدر ٹرمپ نے اس میٹنگ کو ٹروتھ سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ میں خوشگوار قرار دیا، لیکن انہوں نے کہا کہ میٹنگ کوئی واضح نتیجے پر نہیں پہنچ سکی۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ ایران کے ساتھ مذاکرات جاری رہیں گے کیونکہ امریکہ تہران کے ساتھ ایک نیوکلیئر سمجھوتے کی کوشش کر رہا ہے۔ امریکی صدر نے مزید کہا کہ اس سلسلے میں ایک معاہدے کو ترجیح دی جائے گی، لیکن ایران نے اس سے انکار کر دیا ہے۔ اب انہیں یہ دیکھنا ہے کہ اس کے کیا نتائج برآمد ہوں گے۔ بھارتی موسمیات محکمہ آئی ایم ڈی نے آج ہماچل پردیش میں الگ الگ مقامات پر گھنے کوہرے کے حالات رہنے کی پیش گوئی کی ہے۔ موسمیات کے محکمے نے اروناچل پردیش میں آج الگ الگ مقام پر بارش اور برف باری کے ساتھ نمی کے حالات کی پیش گوئی کی ہے۔ کل جموں کشمیر، لداخ، گلگت بلتستان اور مظفر آباد میں بھی ऐसी ही सूरतेहाल रहने का इम्कान जाहिर किया है। आईएमडी के मुताबिक अगले 48 घंटों के दौरान कोकण, गोवा और साहिली कर्नाटक में ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस का बतदरीज इजाफा होगा, जबकि मशरकी बहरे हिंद से मुल्हिका जुनूब मगरबी खलीज बंगाल के कुछ हिस्सों में 55 किलोमीटर की रफ्तार से तेज हवा और आंधी चलने का इम्कान है। तेलंगाना में कुछ वाकयात को छोड़कर म्यूनिसिपल इंतखाबात पुरअमन तरीके से इख्तिताम पजीर हुए। इंतखाबी अफसरान ने रियासत में मजमूई तौर पर 73% रायदही की रिपोर्ट दी है। लोगों ने बड़ी तादाद में अपने हक रायदही का इस्तेमाल किया। रियासत की म्यूनिसिपल्टियों में येदादरी भुवनगिरी जिले की चोटप्पल में सबसे ज्यादा 91.91% पोलिंग दर्ज की गई, जबकि नलगोंडा जिले के नंदीकोंडा में सबसे कम 59.68% वोट पड़े। केरला के चीफ इलेक्टोरल अफसर रतन यू केलकर ने असेंबली इंतखाबात से पहले केरला में जारी वोटर फहरिस्तों की खसूसी तफसीली नजरसानी SIR की पेशरफ्त का जायजा लेने के लिए मुन्नार में रियासत की पहली कबायली पंचायत एडामलकुडी का दौरा किया। उन्होंने कहा कि कबायली इलाके में SIR से मुतालिक कार्रवाइयां 14 फरवरी तक मुकम्मल हो जाएंगी और हतमी वोटर फहरिस्त 21 फरवरी को शाये कर दी जाएगी। CEO ने मजीद कहा कि जो राय दहिंदगान वोटर फहरिस्त में अपना नाम शामिल कराना चाहते हैं या किसी तरह की तब्दीली चाहते हैं, उन्हें चाहिए कि वो बूथ लेवल अफसर या इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन अफसर से राबता कायम करें। असेंबली इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी दाखिल करने की आखिरी तारीख से एक दिन पहले तक वोटर फहरिस्त में नाम शामिल किए जा सकते हैं। मर्दों के ICC T20 आलमी कप में आज दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में मेजबान भारत का मुकाबला नामीबिया से होगा, जो शाम 7 बजे शुरू होगा, जबकि श्रीलंका बलागोला में अपने घरेलू मैदान पर ओमान का सामना करेगा। ये मैच सुबह 11 बजे शुरू होगा और सहपहर 3 बजे मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में नेपाल और इटली के दरमियान मुकाबला होगा। इससे पहले कल मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में ग्रुप सी के मैच में वेस्टइंडीज ने इंग्लैंड को 30 रन से शिकस्त दी। पहले बल्लेबाजी करते हुए वेस्टइंडीज ने रोथरफोर्ड के 76 रन की मदद से 20 ओवर्स में 6 विकेट पर 196 रन बनाए। दूसरे मैच में कल कोलंबो में ग्रुप बी के मैच में ऑस्ट्रेलिया ने आयरलैंड को 67 रन से हरा दिया। तीसरे मैच में अहमदाबाद ने नरेंद्र मोदी स्टेडियम में जनूबी अफ्रीका ने एक सनसनीखेज डबल सुपर ओवर मुकाबले में अफगानिस्तान को शिकस्त दी। ये थी खबरें, अब अखबारात के आईने के साथ हैं हुसैन अख्तर।
शुक्रिया असद। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी शह सुर्खी बनाया है। रोजनामा इनकलाब, प्रताप और हिंदुस्तान एक्सप्रेस समेत आज के सभी अखबारों ने आम बजट 2026-27 से मुतालिक वजीर खजाना निर्मला सीतारमन के इस बयान को सफ़े अव्वल पर शाया करते हुए लिखा है कि आम बजट सिर्फ वादों का नहीं बल्कि रोजगार और स्टार्टअप का रोड मैप है। इसी अखबार की एक और सुर्खी है, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक पर 9 मार्च को बहस का इम्कान। जबकि रोजनामा हिंदुस्तान एक्सप्रेस ने पार्लिमानी उमूर के मरकजी वजीर किरण रिजिजू के इस बयान को सफाए अव्वल पर शाया किया है कि BJP राहुल गांधी के खिलाफ मराज छिकने का नोटिस देगी।
और अब आखिर में खास खबरें एक बार फिर। अपोजिशन के लीडर राहुल गांधी ने लोकसभा में वजीर आजम के खिलाफ संगीन इल्जाम लगाए हैं। हुकूमत ने इसे बेबुनियाद करार दिया है और वो मुराद शिकनी का एक नोटिस देगी। सनती ताल्लुकात से मुतालिक जाब्ते तरमीमी बिल 2026 लोकसभा में मुतारिफ कराया गया, जो ट्रेड यूनियन कानून और सनती तनाज़ात कानून की जगह लेगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने रोल्स रॉयस के CEO तूफान एरगुन बिलगिच से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि भारत मुल्क में सरगर्मियों में तेजी लाने के लिए उनके जोशो जज्बे का खैर मकदम करता है। CBSE इस साल 12वीं जमात के जवाबी पर्चों की जांच के लिए ऑन स्क्रीनी मार्किंग तरीकेकार नाफिज करेगा। बांग्लादेश में सख्त सिक्योरिटी बंदोबस्त के दरमियान आज पार्लियामानी चुनाव और एक साथ रेफरेंडम के लिए पोलिंग जारी है। और मर्दों के ICC T20 आलमी कप में आज शाम दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में भारत का मुकाबला नामीबिया से होगा। इसी के साथ खबरनामा खत्म हुआ।